शेखर की माँ मंझले कद की थी, स्थूल काय, कुछ आलसी स्वभाव की, नीचा माथा, नाक से बहुत सटी हुई कुछ बाहर उभरी हुई सी आंखें, सीधी किंतु छोटी नाक, ओठ सुंदर गड़े हुए लेकिन मुंह कुछ बड़ा और कानों पर कुछ ढीला सा, थोड़ी छोटी और पीछे हटती सी, सारे चेहरे में एक चंचल और वाचल सुघड़ता थी जिसमें गांभीर्य और विशालता ना होने से उसे सुंदरता नहीं कहा जा सकता था, और मुद्रा में, चाल ढाल में, सारे व्यक्तित्व में चारित्र्य और प्रवाह की कमी दिखती थी। माँ अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, ना पढ़ाई के लिए उसके मन में बहुत आदर था। वैसे तो स्त्रियाँ सभी कामकाजी और यथार्थवादी होती है, पर शेखर की माँ के मन में मस्तिष्क की अपेक्षा हाथों का आदर विशेष रूप से अधिक था। कोई व्यक्ति 3 सेकंड में बता सकता है कि 871 रुपये 13 आने में कितनी दमड़ियां हुई, या उनके लिए उतनी आदर की बात नहीं थी जितनी कि या है कि कोई 4.25 आने में तृण प्राणियों को रोटी खिलाकर 2 पैसे बचा सकता है। माँ और पिता के विरोध का एक स्रोत यह भी था। माँ चाहती थी कि लड़के फुर्तीले, चालाक और टिट फिट हो, और पिता को इसमें एक ओछापन दिखता था। माँ को रुचता था कि लड़के इधर उधर मिले, हर एक की बात जाने, पता रखे कि फैलाने की कितनी तनख्वाह मिलती है, फलाने के घर में क्या पका, फलाने की भौजाई का फुफेरा भाई क्या करता है। पिता कहते थे कि तुम किसी के घर मत जाओ, किसी से बात मत करो, और इन सब से तुमको क्या। कभी-कभी माँ किसी को चोरी से पड़ोसी के घर भेजती थी कि अमुक काम तो कर आ या अमुक बात तो पूछ आ, और कभी पिता को पता लग जाता तो लंबी चौड़ी जिरह करते थे कि क्यों गया है, क्या करने गया था, किससे पूछ कर गया था। नौकर नहीं जा सकता था। माँ उदार नहीं थी, वह क्रोधी भी नहीं थी, उन्हें आप से बाहर किसी ने नहीं देखा, लेकिन किसी अपराधी को वे कभी भूलती नहीं थी। उनके स्वभाव में इतनी विशालता ही ना थी कि वे बड़ा क्रोध कर सके, इसलिए अनुकंपा भी उनकी बड़ी नहीं थी। पिता किसी दोषी पर भी क्रुद्ध होकर बाद में सुलह करते थे, माँ स्वयं गलत होने पर भी यह प्रकट नहीं होने देती थी, और जिससे डांटा होता था उस पर अपनी अप्रसन्नता बनाए रखती थी। माँ के लिए आकारों का महत्व बहुत था। कभी लड़कों को संध्या और पूजा पाठ की शिक्षा दी गई थी, तब पिता ने धीरे धीरे यह देखकर उस अवस्था में उनके लिए उसमें ध्यान लगाना असंभव है, अंत में उन्हें बाध्य करना छोड़ दिया था। बहुत क्रुद्ध होकर कहा था, यदि मन से नहीं कर सकते तो क्या फायदा है, मत किया करो। और लड़कों के इस बात को मानकर पूजा छोड़ देने पर दोबारा उनसे नहीं कहा था। तब माँ ही थी जिन्होंने उन्हें बाध्य किया था कि वे नियम से आसान लगाकर पूजा के स्थान में बैठ जाया करें और पूजा की क्रियाएं पूरी किया करें। पिता आवेश में आतताई थे, माँ आवेश की कमी के कारण निर्दयी। पिता का क्रोध जब बरस आ जाता था तब शेखर जानता था हम फिर सका हैं। माँ जब कुछ नहीं कहती थी तब उसे लगता था कि वह मीठी आंच पर पकाया जा रहा है, और इन दो भिन्न प्रकृतियों के मेल और संघर्ष से उत्पन्न हुई थी 6 संतान, सरस्वती, ईश्वरदत्त, प्रभुदत्त, शेखर, रविदत्त और चंद्र। यही उस संघर्ष के फल थे और यही उसके विकास की क्रीड़ा स्थल भी। जीवन वैचित्र्य का दूसरा नाम है। जिनके जीवन एकरूपता के बोझ से कुचले जाकर नष्ट हो गए हैं, उनके जीवन में भी उतनी घटनाएं हुई होंगी कि एक सुंदर उपन्यास बना सके। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवनी लिखने लगे तो संसार में सुंदर पुस्तकों की कमी ना रहे, लेकिन तब जब हर एक को लिखना आता हो। हमने कलाजियों में पढ़ा है कि आजकल इतनी कहानियाँ इसलिए बनती है कि उनके लिए सामग्री आसानी से मिल जाते हैं। मैं अब भी कल्पना में देख सकता हूँ हमारे दुबले पतले अंग्रेजी के प्रोफेसर मोटे सिंह की फ्रेम की अनेक के पीछे अपनी मेंढक की सी आंखें फैलाए, बोलने में मुंह की अपेक्षा नाक का अधिक प्रयोग करते हुए कह रहे हैं, तुम में से प्रत्येक के जीवन में कम से कम एक महत्वपूर्ण घटना हुई होगी जो औरों से अलग विशिष्ट खड़ी रहती है, और इसलिए तुम में से कम एक अच्छी गल्प लिख सकता है। इतना विराट, इतनी विशिष्ट, इतनी सनसनीदार जीवनियाँ कम लोगों की होती है कि उनसे अच्छा उपन्यास बन सके। लेकिन मुझे जान पड़ता है कि मेरे जीवन की जो भी घटना मेरे सामने आती है वह मेरी है, मौलिक है, अपने संपूर्ण एक कहानी है और मेरा सारा जीवन बढ़िया उपन्यास। शायद मुझी को ऐसा जान पड़ता हो, अपने जीवन के प्रति मेरा मोह उसे इतना विशिष्ट बनाता हो, लेकिन साथ ही मैं यह भी देखता हूँ कि वह इतना विशिष्ट, इतना एकांत मेरा भी नहीं है कि दूसरे उसमें रुचि ना रख सके। मेरे व्यक्तिगत जीवन में मानव के समष्टिगत जीवन का भी इतना अंश है कि समष्टि उसे समझ सके, उसमें अपने जीवन की एक झलक पा सके। मेरे जीवन में भी व्यक्ति और टाइप का अविश्लेष्य घोल है, जिसके बिना कला नहीं है और जिसके बिना फलता उपन्यास नहीं है। बिल्कुल संभव है कि ऐसी सामग्री पाकर भी मैं उपन्यास ना बना पाऊँ, लेकिन मेरा उद्देश्य उपन्यास लिखना कब है? मैं केवल एक बोझ अपने ऊपर से उतारना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन किसी को देना नहीं चाहता, स्वयं पाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अब वैसे देना है जैसे देकर वह फिर मुझे मिलेगा नहीं। बिल्कुल पूर्णता नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, या अब शेखर नहीं है, या मैं कहूँ कलाकार बनने का इच्छुक कवि यश पार्थिव शेखर समाप्त हो गया है। अब वह बचा है जो मैं हूँ, जो फांसी चढ़ेगा, जो मैं हूँ, जिसे मैं कहता हूँ और कहकर अर्थ नहीं समझता कि मैं क्या हूँ। लोग प्रायः भूल ही जाते हैं कि उनके जीवन क्या रहे, तभी समाज अपने लिए यह संभव पाता है कि विधान करे योग्य माता पिता वे हैं जो बच्चे को वही प्राप्त लोगों की तरह रहना सिखाए। इस एक भावना ने यौवन का जितना अपघात किया है उतना शायद ही किसी और कानून या प्रथा का विधान ने किया हो। अपनी संतान को वही प्राप्त लोगों सा बर्ताव सिखाते समय वे भूल जाते हैं कि उनके अपने जीवन क्या थे, कि वे कभी बच्चे थे, उनमें भी बच्चों का निष्पाप शरारत थी। कि बच्चों का कोई दोष है तो यह है कि इतने भोले, इतने अछूते, इतने स्वच्छ निष्पाप हैं कि वे अपने माता पिता को अपने कपट पर लज्जित कर देते हैं। यदि माता पिता अपना बचपन याद भर रख सकते हैं तो उनकी संतान और वे स्वयं कितने सुखी होते। माता पिता प्रायः समझते हैं कि बचपन बड़े सुख का समय है, क्योंकि वह उत्तरदायित्व शून्य है, और यह विचार उनके हाथों बचपन के प्रति कितने अन्याय करवाता है। इसी विचार के कारण वे बहुधा मनाया करते हैं, काश कि वे दिन फिर आ जाते। यदि कभी कुछ दिन के लिए उनकी इच्छा पूरी की जा सकती तो वे एक बड़ा उपादेय सबक सीख कर आते। कभी तो विवश पूछना पड़ता है कि वे आखिर बच्चों को समझते क्या हैं, जहाँ एक ओर वो कहते हैं कि बच्चे सब बदमाश और पाजी होते हैं, वहाँ दूसरी ओर वह ऐसा भी बर्ताव करते हैं कि मानो बच्चे मिट्टी के लौंदे से अधिक कुछ ना हो। बच्चों के सामने ऐसी हरकतें करते हैं जो यदि वे बच्चों को तनिक भी समझते तो कल्पना में भी लाते भी लज्जित होते। किसने नहीं सुना, अरे इसके सामने कहने में क्या हर्ज है, या तो बच्चा है, अरे उसे क्या पता, वह तो बच्ची है। उत्तरदायित्व शून्य बच्चे की निष्कपटता का उत्तरदायित्व कितना बड़ा है वह भला क्या समझे। वे कोमल अविकसित मस्तिष्क अपनी कोमलता के कारण ही अधिक भयंकर होते हैं। हम लोग पक्की सड़क पर चलते हैं तब हमारे पांवों की छाप नहीं पड़ती, लेकिन जब गीली मिट्टी पर धूल रेत पर चलते हैं तब पैर बहुत गहरा धंस जाता है। पक्की सड़क पर पानी बह जाता है, कच्ची सड़क पर जहाँ जहाँ धंसे हुए पैरों से गड्ढे होते हैं वहाँ कीच बनती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये पन्ने मेरे पिता तक पहुँच सकते, अपने पुत्र का हृदय इस प्रकार खुश हुआ देखकर उन पर क्या बीतती। उन असंख्य घटनाओं को जिनमें अपने पुत्र के हृदय को ना समझकर जिनके द्वारा उन्होंने उसके चिथड़े करके उसे अपने से दूर ढकेला था वह कैसे देखते, और उन घटनाओं को जिनमें पुत्र पुत्र होने के कारण पिता के पितृत्व को समझने में असमर्थ होता था और दुख देता और पाता था, और माँ वह माँ जो उसे एक बोझ और भी कटीला बोझ मात्र समझती थी। अच्छा यही है कि वे नहीं देखेंगे इन्हें, मैं तो अब संसार से अलग हो गया हूँ, मैं कौन हूँ जो उसमें किसी भी व्यक्ति का सुख छीनूं। करोड़ों वर्ष से मानव की एक ही चेष्टा रही है कि या तो सुख पा ले या उसकी कामना को खो दे, और इन दोनों में यह ही वह असफल रहा है। शेखर अपने पिता का उपासक था। प्रायः लोग संतान पर माँ के प्रभाव की बात कहा करते हैं। बहुतों का विश्वास है कि सभी असाधारण व्यक्तियों पर उनकी माँ का प्रभाव रहा है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ पुत्रों पर माँ का प्रभाव पुत्रियों पर पिता के प्रभाव की तरह नकारात्मक होता है। वह स्थिरता देता है, उत्थान में भी उनका ही बाधक होता है जिनका कि पतन में। यों कहना चाहिए माँ की ओर आकर्षित पुत्र और पिता की ओर आकर्षित कन्या साधारणता की ओर सामान्यता की ओर जाते हैं, और पिता की ओर आकर्षित पुत्र माता की ओर आकर्षित कन्या असाधारण होते हैं। पहली श्रेणी में मिलेंगे सीधे साधे शांत आदमी, समान स्त्रियाँ जिनमें कोई खास बुराई नहीं है, जो साधारणता प्रश्न और संतुष्ट जो जीते हैं रहते हैं और मर जाते हैं। दूसरे में मिलेंगे प्रतिभावान लेखक और कवि, देश और संसार को बदल देने वाले सुधारक, क्रांतिकारी, डाकू, जुआरी, पतित से पतित मानवता के प्रेत, अच्छे या बुरे, उनके लिए साधारणता नहीं है, वे सुलग नहीं सकते, फट ही सकते हैं। अच्छे और बुरे का निर्णायक कौन है? शेखर साधारण नहीं था और वह अपने पिता का उपासक था। धीरे धीरे पिता को भी जान पड़ने लगा कि गांधीवाद शेखर के हृदय में घर करता जा रहा है। एक दिन शेखर को बुलाकर पूछा, तुम हर वक्त गांधी का नाम क्यों चिल्लाया करते हो? मैं गांधी को मानता हूँ, मैं उसके बताए पथ पर चलूंगा। पिता ने हंसकर कहा, उस पथ पर चलोगे? गांधी की शिक्षा तुमने समझी भी है? कोई तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ लगाए तो क्या करोगे? शेखर ने बिना हिचकिचाहट से कहा, दूसरा गाल आगे कर दूंगा। उधर शेखर के मुंह से यह सुनकर पिता गंभीर हो गए, बोले, जाओ खेलो, इन सब बातों को अभी तुम्हें क्या पड़ी है, बड़े होगे तो सब कुछ करना, अभी अपने खेल में रहो। यह नुस्खा शेखर ने कई बार सुना है और वह जानता है कि इसके पीछे सदा कोई उलझन या असमर्थता छिपी होती है, लेकिन वह यह भी जानता है कि इससे अलग कुछ कहना बेकार है। एक दिन पिता के एक मित्र आए, बैरिस्टर थे, खूब भड़कीले कपड़े पहने थे, बहुत फूले हुए पहाड़ी चूहे से दिखते थे और भारतीय कला के पारखी होने का दावा करते थे। साथ ही उनका लड़का और ऊंची फ्रॉक पहने लड़की भी थी। परस्पर सामना होते ही जिस क्षण में दोनों बच्चों ने कहा गुड इवनिंग, उसी क्षण शेखर भून गया, पर कुछ बोला नहीं, उन्हें अपने साथ बगीचे में ले गया और अपने पालतू खरगोश दिखाने लगा। बैरिस्टर साहब पिता के साथ चल गए, लेकिन वे कुछ ही मिनट के लिए आए थे। शेखर और दोनों भाई बहन खरगोशों से खेलने लगे कि वे उत्तर आए। गांधीवादी शेखर द्वार तक सबको छोड़ने चला। द्वार पर पहुंचकर उसने शुद्ध स्वदेशी ढंग से दोनों हाथ जोड़कर सिर को झुकाकर कहा, नमस्ते। लड़के ने कुछ मुस्कुराकर कहा, गुड नाइट डियर। शेखर को गांधीवाद भूल गया। उस मुस्कुराहट में जो अहमनीयता थी वह उसे सह नहीं हुई, और अंतिम डियर या नामहीन जंतु मुझे डियर कहने का साहस करे, शेखर ने तड़प कर अंग्रेजी में कहा, यू डर्टी स्नोब, यू स्निक, अर्थात दम भी कमीना, और ऐसा ही बहुत कुछ, और एक तमाचा उसके मुंह पर जड़ दिया। वह डरे हुए पिल्ले की तरह चीखने लगा। थोड़ी देर बाद शेखर भी पिटा और खूब पिटा, लेकिन वह मन ही मन कहता रहा, मैं कुत्ते का पिल्ला नहीं हूँ, मैं चूं चूं नहीं करता, और मार खा गया। पिता ने जिस दिन से शेखर की दूसरा गाल बढ़ा देने की बात सुनी थी, उस दिन से जब कोई आया करता था तब उसका प्रदर्शन किया करते थे। मित्रों के सामने बुलाकर उससे पूछते, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ लगाए तो क्या करोगे? और उसका उत्तर सुनकर सब लोग हंसते, तब उसे जाने की अनुमति मिल जाती। कुछ तो वे उसका प्रदर्शन ही करना चाहते थे, कुछ शायद उन्हें यह भी आशा थी कि इस बात को बार बार दोहराने से शायद उसका अक्खड़पन कुछ कम हो जाए, उसमें कुछ नम्रता आ जाए। शेखर को पहले तो यह प्रदर्शन बहुत बुरा लगता था, पर धीरे धीरे इसके बारे में उसने दार्शनिक को तटस्थ भाव स्थापित कर लिया था। वह आता, उत्तर देता और बिना किसी की ओर देखे तुरंत लौट जाता, क्योंकि वह जानता था कि इससे आगे मेरी जरूरत नहीं है। मुझसे जो कुछ हुनर, जो करामत इन लोगों को देखनी थी वह दिखाई जा चुकी। एक दिन ब्रिस्टर साहब फिर आए। अब की बार वे अकेले थे। उन्होंने शेखर को देखा नहीं, शेखर ने उनको नहीं देखा, ऊपर चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद शेखर की बुलाहट हुई, वह पिता के पास पहुँच कर खड़ा हो गया। ब्रिस्टर साहब की ओर उसने देखा भी नहीं। पिता ने पूछा, क्यों बेटा शेखर, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ लगाए तो क्या करोगे? शेखर ने देखा, बैरिस्टर साहब की आंखें उस पर स्थिर है और मानो कह रही है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम क्या उत्तर दोगे, फिर भी कहो। नहीं, इस पहाड़ी चूहे के सामने नहीं, वह जंतु है प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन इसके सामने नहीं। पिता, नहीं, मुझे बाध्य मत करो। पिता ने प्रश्न दोहराया, फिर विशेष शेखर के लिए धीमे स्वर में, जिसका धीमापन क्रोध को छिपाता नहीं था, कहा, बोलो गधे। शेखर ने पहाड़ी चूहे की ओर देखते हुए कहा, मैं उसके दोनों गालों पर लगाऊंगा। उसके स्वर में हिंसा थी, दृष्टि में रोष, मानो वे काल्पनिक दो थप्पड़ वह ब्रिस्टर साहब के फूले गालों पर लगा रहा हो। लेकिन बात कहते ही उसने जो लंबी सांस ली, उससे कितनी गहरी हताशा, कितनी प्रगाढ़ नैराश्य था, वह किसने समझा? शेखर सीढ़ियां उतर गया। जैसा काम उसने किया था उसके अनुरूप चाहिए था कि उसकी चाल में उद्यतता होती, लेकिन वह ऐसे उतरा जैसे वर्षों का थका हो टूटा हो। अपने कमरे में जाकर शेखर ने अलमारी में से किताबें निकालकर नीचे गिरा दी और दबा हुआ अपना नाटक निकाला। क्षण भर सोचता रहा कि क्या करे। दरवाजे के बाहर खड़ी गऊ को देखकर उसके पास गया और नाटक की कॉपी उसकी ओर बढ़ा दी। गऊ ने मुंह से उसे पकड़कर झपट कर शेखर के हाथ से छुड़ा लिया, और अपनी बड़ी बड़ी भोली बेवकूफ आंखों से शेखर की ओर देखता ही गया और उसे खा गई। शेखर आकर अपने कमरे में बैठ गया और सामने की दीवार की ओर देखता हुआ रोने लगा, बिना आंसुओं के, बिना स्वर के, किंतु मानो सारे शरीर से उसका सारा पिंजर हो यूं हिलने लगा। शाम हो गई। शेखर अभी वहीं बैठा था, उसका हिलता हुआ पिंजर शांत हो गया, आंसू एक भी नहीं आया था, और उसे पता नहीं था कि वह जीता है या मर गया है। निराशा इतनी बढ़ गई थी कि वह निराश नहीं रहा था, वह अनुभूति से परे चला गया था। सरस्वती बत्ती लेकर कमरे में आ रही थी। शेखर को वहाँ वैसे बैठा देखकर उसने बत्ती बाहर ही रख दी और पास आकर स्नेही से बोली, शेखर। शेखर ने नहीं सुना। सरस्वती ने उसके कंधे पर धीरे से हाथ रख कर कहा, शेखर। उसने फिर नहीं सुना। शेखर ने एक उंगली से धीरे उसकी थोड़ी उठाते हुए कहा, बोलोगे नहीं शेखर? क्रोध होता तो शेखर उसके हाथ झटक देता, लेकिन उसने मुंह ऊपर उठने नहीं दिया और शून्य दृष्टि से सरस्वती की ओर देखा। उसने सरस्वती को नहीं देखा। सरस्वती ने एक बार फिर अनिश्चित स्वर से कहा, शेखर, और परे हट गई। कमरे के एक दूसरे कोने में जाकर निश्चल बैठ गई। बहुत देर तक कमरे के दोनों ओर दो लोग बैठे थे। ऊपर से आवाज़ आई, सरस्वती। वह नहीं हिली। आवाज़ फिर आई, फिर भी नहीं हिली। फिर आई और साथ आया, कहाँ मर गई है? शेखर ने कहा, बहन। वह नहीं बोली। फिर कहा, बहन। फिर उठकर उसके पास आकर कहा, बहन। नहीं बोलोगी बहन? गुस्सा हो गई हो क्या? आपकी नहीं बोलेगी तो मैं भी नहीं बोलूँगा। बोलो बहन। सरस्वती उठी और ऊपर चली गई। थोड़ी देर बाद शेखर भी उठा, मुंह धोकर चला गया और रोटी खाने लगा। उस एक छोटी सी घटना में शेखर के भीतर क्या कुछ टूट गया था और इस एक और भी घटना ने किस चीज़ से उसे बचा लिया, कौन कहे। लेकिन गांधी जी गए और गांधीवाद भी गया और शेखर के देवता उसके पिता भी फिर भी वहाँ कभी नहीं हुए। मैं अपनी कोठरी के बाहर सूनी दीवार की ओर देख रहा हूँ। रोजेटी की कुछ पंक्तियाँ मेरे भीतर गूंज रही है। वो पंक्तियाँ हैं अंग्रेजी में, हु सेल डेयर टू सर्च थ्रू वाट सेड मैज हैंस फॉर देयर इनकम्युनिसेबल वेज फॉलो द डेस्लोरिटी फिट ऑफ डेथ। मृत्यु एक स्तिमित कर देने वाली घटना, एक हल ना होने वाली पहेली। जिन्हें दुख है, दर्द है, वे सदा मृत्यु मांगते रहते हैं, उसके लिए पार्थी होते हैं, लेकिन उनके लिए मृत्यु बड़ी भयंकर चीज होती है। वे उसके विचार से ही कांपते हैं, लेकिन मुझे लगता है मृत्यु एक ऑपरेशन है, जैसे दांत उखड़वा देना। कुर्सी पर बैठना पड़ता है, डॉक्टर एक झटका देता है, एक तीखा दर्द होता है और फिर शांति मिलती है, छुटकारा हो जाता है। मृत्यु भी वैसी ही है, लेकिन अच्छी डाल निकालवाने पर रक्त बहता है और सूजन होती है, तब असमय में जीवन छीनने पर भी। शायद मृत्यु का गान, ज्ञान और जीवन की कामना एक ही चीज है। यह बहुत बार सुनने में आता है कि जीना वही जानता है जो मरना जानता है। या नहीं सुना जाता है कि जीवन सबसे अधिक प्यारा उसको होता है जो मरना जानता है। पर यह भी ध्रुव सत्य, जो लोग समझते हैं कि जीवन को प्यार करते हैं वे मृत्यु से डरते हैं, बिल्कुल गलत। जो मृत्यु से डरते हैं वे जीवन से प्यार कर ही नहीं सकते, क्योंकि जीवन में उन्हें क्षण भर भी शांति नहीं मिल सकती। जीवन प्यारा है या नहीं, इसकी कसौटी यही है कि उसे बिना खेद के लुटा दिया जाए, क्योंकि विराट प्रेम मौन ही हो सकता है। जो अपना प्यार कह सकते हैं उनका प्यार ओछा है। दी द सोलिटरी फिट ऑफ डेथ। मृत्यु के भटके हुए उदास पैर द्वार द्वार पर जाते हैं और यौवन मुझे मुरझा जाता है और जीवन घुल जाता है और वेदना है अनंत। एक निर्वरता का क्षण आता है जिनमें उन श्याम पंखों की उड़ान का रौ सुन पड़ता है, जिन्हें देखना सो जाना है और कोई उगता है और सो जाता है। हर व्यक्ति, हर वस्तु केवल या तृप्त ना होने वाली भूख या किसी चरम ध्येय की पागल मांग है, या मुक्ति का विवश आकर्षण, या नहीं बस होता मृत्यु के पंख उस पर से बीत जाते हैं, लेकिन उनकी छाया उसे नहीं ग्रसती, वैसा ही उद्दीप्त छोड़ जाती है। मृत्यु के पंखों में बसा है अनंत निश्चय का अंधकार, लेकिन मुक्ति है एक असहत्य देदीप्यमान ज्वाला। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, मैं दीवारों से कहता हूँ, मैं सिकंचों से कहता हूँ, मैं हवा से कहता हूँ, मैं सुनने वाली ना सुनती हुई हृदयहीन उपेक्षा से कहता हूँ। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीवन को प्यार करता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। मैं घृणा के इस संसार से इतना कुचला गया हूँ कि प्यार मेरा अपरिचित हो गया है, लेकिन कल्पना की आँखों से जब देखता हूँ शिशिरकालीन फीकी चांदनी में गेहूँ के पके हुए खेत से कोई स्वर अपने प्रियतम को बुलाता है, तब मेरे हृदय में कोई सुप्त प्रतिध्वनि जाग कर कहती है, तुमने भी कभी प्यार पाया है? मैं पीड़ा से इतना घिरा हुआ हूँ कि आनंद मेरा अपरिचित हो गया है, लेकिन कल्पना की आँखों से जब अंधियारे आकाश के पट पर दो उलझे हुए शरीरों का चित्र देखता हूँ, तब मेरे अंतरंग में कोई शब्दहीन स्वर मानो चौंक कर अपने आप पर पा लेता है, तुमने भी कभी आनंद जाना है? पैराग्राफ चेंज। प्रभात। पूर्व में एक दीप्त दीप्ति घुलती हुई धुंध शीतल समीर हंसते हुए ओसकन मान करती हुई सीमालती कन्या पागल गुंजार करते हुए भौरे जंगल पर होकर बस्ती की ओर उड़ते हुए असंख्य पक्षी, मैं कल्पना में इन सब को देख सकता हूँ। अपनी कोठरी की नंगी दीवार पर बिखरे हुए लाल प्रकाश के एक चौकर टुकड़े में मेरे लिए इतना ही बहुत है कि रात बीत गई है और मैं उस लाल टुकड़े को देख सकता हूँ। मैं उसी नींव पर सपने खड़े करता हूँ। मालती फूल उनका मधुर सौरभ, लेकिन कहाँ है नीम के बराबर सौरभ? वह सौरभ जिसे मैं भूल नहीं सकता, जो मुझे परिव्याप्त है। नीम का स्वाद कटु है, गंध मधुर, ऐसा ही है प्रेम है, जिसका रंग सुंदर है और स्पर्श कठोर। लेकिन मुझे जीवन और प्रेम से क्या, जिसका परिणाम मृत्यु की कठोर यथार्थता से होने वाला है। ईश्वर की ओर अपने जीवन को नास्तिक कहकर शेखर मानो अपने चारों ओर के जीवन के लिए नंगा हो गया, मानो अपने किसी घोंघे में से बाहर निकल आया, प्रत्येक चोट, प्रत्येक झोंका, प्रत्येक आघात के लिए प्राप्त स्पर्श वह मानव संसार का एक दर्शक मात्र हो गया। दर्शक भी नहीं, केवल एक छाप लेने वाली, अंकित करने वाली मशीन। स्वयं उसमें कोई शक्ति नहीं रही थी, उसका कोई आवरण, कोई कवच, कोई बचाव नहीं था, और मानो उसमें अनुभूति नहीं थी, प्राण ही नहीं थे। वह मानो एक विराट आंख मात्र हो गया था, जो सब कुछ देखती जाती थी, जो कुछ स्वीकार करती जाती थी और कुछ भी प्रभावित नहीं होती थी। वह वास्तव में पूरी सच्चाई से वैसा हो गया कि कवि के शब्दों में, आई एम लाइक ए रीड थ्रू विच दी स्प्रिट ब्रीथ्स, इट कमेट एंड इट गोथ। अर्थात, मैं एक बांस की पोरी हूँ जिसमें तेरी आत्मा सांस फूंकती है, वह आती है और चली जाती है, लेकिन उसके मस्तिष्क के किसी अंधेरे कोने में एक सर्टिक दफ्तर था, जहाँ प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक वस्तु छटकर अलग होती, नाम और लेबल पाती और ठीक ठिकाने रख जाती थी। आत्मा की सांस आती थी और चली जाती थी, और अनछुती भूमि में नया बीज जकड़ पड़ रहा था। शेखर वैसा हो गया जिसे कि माँ, यदि उन्हें कभी किसी को किसी बात का श्रेय देने की आदत होती, आदर संतान कहती। वह कभी ज्यादा बात नहीं करता, कभी प्रश्न नहीं पूछता, भाजी कम हो जाने पर कभी नहीं मांगता, बिना शिकायत किए सर्दी में भी ठंडे पानी में नहा लेता है यथा समय पड़ता है, बल्कि पढ़ाई के समय में तनिक भी देर हो जाने पर सरस्वती को बुलाकर कहता है, बहन जी पढ़ाने का वक्त हो गया। दोनों वक्त यथा नियम संध्या करने बैठता है। संक्षेप में ऐसे रहता था है कि माँ को ऐसा लगे उसके 5 ही संतान हैं, शेखर की देखरेख उसके करने की ही ना पड़े। शेखर मानो जीवन के स्लेट पर से भूल या गलत लिखे गए अक्षर की तरह अपने को मिटा देना चाहता था। लेकिन कितनी बातें थी जो वह जानता था और पूछने से रह जाता था। कभी कोई प्रश्न उसके होठों पर आ जाता था तब वह दांत पीसता था, फिर भी वह वश ना चलने पर ओढ़ काटता था, यहाँ तक कि खून बह आता था और प्रश्न नहीं पूछा जाता था। कभी पिता उस ओट चबाते देखते तो मना करते, और जब बहुत कुछ कहने पर भी उस पर असर होता ना देखते तब क्रुद्ध होकर कहते, अच्छा फिर मैं ठीक कर दूं, और चुटकी में भर कर उसका होठ मसल डालते थे। वह मन में समझता था कि जैसी पीड़ा हुई ही नहीं, लेकिन उसके बाद वह पिता की ओर ऐसी आंखें से देखता था मानो उन्हें पहचानता ना हो। पहले तो यह कि माँ को क्यों कभी कभी सबसे अलग जा बैठती है, रसोई में नहीं आती, अलग बर्तनों में खाना खाती है, और कोई उनके पास जाता है और तो कोई जाता ही नहीं। प्रायः शेखर के छोटे भाई ही जाते हैं तो कहती है, मेरे पास मत आओ, जाओ खेलो, सो जब क्यों। पता नहीं किसने शेखर को बताया था कि वे बीमार होती है, लेकिन शेखर बीमारी के लक्षण तो देखता नहीं। और फिर 2-4 दिन बाद एक दिन सवेरे उठकर देखता है माँ नहा धोकर रसोई में बैठी है और काम कर रही है। यदि कल रात बीमार थी तो सवेरे क्या हो गया। दूसरे या कि शेखर को याद आ रहा है, ऐसा बात अब बहुत दिनों से नहीं हुई, लेकिन अब जैसे माँ कुछ बीमार जान पड़ने लगी है। उनका मुंह पीला पड़ रहा है और वे काम बहुत कम करती है, प्रायः ढीली सी और कुछ उदास रहती है। तीसरे या कि एक दिन उसने सहज ही सरस्वती से कहा, माँ बीमार है क्या। तो सरस्वती ने एक सी तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे चली गई। वह पूछेगा नहीं उसे क्या, लेकिन वह जानना चाहता है क्यों, और भी कुछ बहुत कुछ जानना चाहता है। जिस कमरे में माँ प्रायः रहती है उससे एक आलमारी है जिसमें ताला लगा रहता है। शेखर ने माँ को कभी कभी उसे खोलते देखा है। उसमें निचले खाने में वे अपने गहने इत्यादि रखा करती है, और कभी कभी बिस्कुट के डिब्बे, गुलकंद, च्यवनप्राश का डिब्बा और अन्य ऐसी चीज़ें जो लड़कों से बचाने की है। लेकिन उसके ऊपर 2 खाने में किताब भरी पड़ी है। वे क्या है, जब घर भर में किताबें बिखरी पड़ी है, अच्छी से अच्छी बहुमूल्य सब इंसाइक्लोपीडिया तब खुली रहती है, तब वे किताबें क्यों ऐसे संभाल कर रखी जाती है। वे अच्छी है तो क्यों नहीं उसे पढ़ने को दी जाती है, बुरी है तो क्यों रखी गई है। और शेखर कहाँ से आया, कैसे आया, वैसे वे दिन याद आए जब चंद्र का जन्म हुआ था। उसने माँ से पूछा था, माँ यह कहाँ से आया, और माँ ने बताया कि दाई ने लाकर दिया था। लेकिन जब उसने दाई से पूछा था कि वह उसे इतना छोटा क्यों लाई और बड़ा लाती, तब उसने उत्तर दिया था, मैं नहीं लाई, वह जो डॉक्टर आया था वह अपनी बैग में रख कर लाया था, उस बैग में उससे बड़ी आ नहीं रही सकती। तब शेखर को दोनों पर ही विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन वह चुप रह गया था। उसके काफ़ी दिन बाद जब उसने पहले पहल अंडे से चिड़िया का बच्चा निकलते देखा था, तब उसे निश्चय हो गया कि माँ उससे झूठ बोली है, और माँ को अनजाने में आजमाने के लिए वह उसके पास गया था और पूछ उठा कि माँ डॉक्टर चिड़ियों के पास भी जाते हैं। माँ उसका प्रश्न समझी नहीं और बोली, नहीं तो क्यों, सब चिड़ियों के बच्चे कहाँ से आते हैं, अंडों में से निकलते हैं। यहाँ तक तो माँ सच बोल रही है, शेखर ने फिर कुछ आशा से पूछा, और अंडे कहाँ से आते हैं? ईश्वर भेज देता है। फिर वही दीवार, ज्ञान के पथ में सबसे बड़ा विघ्न ईश्वर। तब उससे बहन से पूछा, ईश्वर अंडे कहाँ से देता है? बारिश के साथ बरसा देता होगा। लेकिन थोड़ी दिन बाद शेखर जान गया कि यह अभी गलत है। बारिश सब जगह एक सी होती है, तब अंडे क्यों अलग-अलग घोंसले में और तरह-तरह के होते हैं? और एक दिन उसने एक घोंसला देखा जो खाली था, दूसरे दिन उसमें अंडे थे, और बीच की रात में बारिश नहीं हुई थी। शेखर समझ गया था कि सब लोग उससे झूठ बोलते हैं, और वह जानना चाहता था। एक कमरा अलग कर दिया गया, साफ किया गया, गोबर से लीपा गया, खिड़कियां बंद कर दी गई, और माँ उसमें चली गई। एक दाई आकर उनके पास रहने लगी, और सब लोगों को वहाँ आने जाने को मनाही हो गई। चंद्र की जन्म की बात याद करके इन लक्षणों से शेखर ने जान लिया कि दाई या डॉक्टर या कोई शक्ति उनके परिवार पर एक बार फिर कृपा दृष्टि करने वाली है, और वह डॉक्टर के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात में एकाएक शेखर चौंक कर जगा। वह नहीं समझ सका कि वह क्यों जगा, लेकिन उसे ऐसा लगा अवश्य कुछ हुआ है। वातावरण में किसी दबाव सी की भनक पड़ी उसे। वह उठकर बैठ गया, चारों ओर देखने लगा। उसने पाया उसके साथ वाली चारपाई खाली है, सरस्वती वहाँ नहीं है। वह चारपाई से उतरा और दूसरे कमरे में गया जहाँ पिता सोते थे। पिता वहाँ नहीं थे। निचली मंजिल में प्रकाश था। ना जाने क्यों शेखर को साहस नहीं हुआ कि वह नीचे जाकर देखे। पहले कभी ऐसी बात नहीं होती तो वह अवश्यमेव नीचे जाकर देखता, लेकिन अब नहीं। अब वह बूझ जाना चाहता था, दिखना नहीं चाहता। कोई उससे पूछे कि वह क्या करने आया, इसका उत्तर देना तो क्या, या प्रश्न सुनने का भी साहस उसमें नहीं रहा है। अपने आप में उसका विश्वास टूट गया हुआ है, लेकिन जिज्ञासा वह चढ़े हुए चिल्ले की तरह तना हुआ खड़ा रह गया। एक तीखी भेदक किंतु फिर भी निर्बल और जैसे झुलझाई हुई सी चीख। शेखर ने जान लिया कि शक्ति का भी वह काम था, और उनके शेखर का धोखा ले दे लिया है, और उसके प्रश्न का उत्तर अब नहीं है।